एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी दुनिया की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद है, पर हम शायद उसके बारे में रोज सोचते नहीं। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारा इम्यून सिस्टम।
बिल्कुल।
और इस सफर में हमारी गाइड होगी मैट रिचटेल की किताब एन एलिगेंट डिफेंस, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी न्यू साइंस ऑफ द इम्यून सिस्टम।
एन एलिगेंट डिफेंस।
ये किताब न सिर्फ ये समझाती है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, बल्कि ये भी बताती है कि ये कितना कितना अद्भुत और कितना नाजुक है।
और ये आज के समय में बहुत रेलेवेंट टॉपिक है ना।
हाँ बिल्कुल।
हम सब ज्यादा साफ सफाई रखने लगे हैं, मेडिकल साइंस इतनी आगे बढ़ गई है।
सही बात है।
लेकिन फिर भी एलर्जीज, अस्थमा और ये ऑटो इम्यून बीमारियां, जहाँ शरीर अपने आप पर ही हमला कर देता है, ये सब बढ़ क्यों रही है? ये किताब इन सवालों के जवाब ढूंढने में मदद करती है।
हाँ, और ये किताब इम्यून सिस्टम को सिर्फ एक जैसे एक सेना की तरह नहीं देखती जो बस कीटाणुओं से लड़ती रहती है।
अच्छा।
बल्कि ये इसे एक बहुत ही जटिल, एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम की तरह देखती है, जिसका असली काम शरीर में एक सामंजस्य बनाए रखना है।
एक तरह का सुरुचिपूर्ण बचाव, एलिगेंट डिफेंस।
एग्जैक्टली।
आज हम इसी संतुलन और इसकी बारीकियों पर बात करेंगे।
तो किताब में घुसने से पहले लेखक के बारे में जानना भी दिलचस्प होगा। मैट रिचटेल ये कोई इम्यूनोलॉजिस्ट या डॉक्टर तो है नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक पुलित्जर प्राइज विजेता पत्रकार हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखते हैं।
और शायद यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है।
हाँ, मैं भी यही मानती हूँ। वो मुश्किल साइंटिफिक टॉपिक को पकड़ते हैं
और उन्हें हम जैसे आम लोगों के लिए बहुत ही मानवीय कहानियों और अनुभवों के जरिए सरल और दिलचस्प बना देते हैं।
उनका काम जैसे विज्ञान और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के बीच एक पुल सा बनाता है।
बिल्कुल। जैसे उनका वो डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग पर काम था, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल यूज करने वाला।
हाँ हाँ, याद है।
उसमें भी उन्होंने टेक्नोलॉजी, हमारी आदतें और सेहत के बीच का कनेक्शन दिखाया था। वही नजरिया वो यहाँ इम्यून सिस्टम पर लाते हैं।
मतलब इसे सिर्फ एक बायोलॉजिकल मशीन की तरह नहीं देखते।
नहीं, बल्कि हमारे माहौल, हमारी भावनाएं, हमारा स्ट्रेस, हमारे रोज के फैसले, इन सब से प्रभावित होने वाले एक जीवित सिस्टम की तरह देखते हैं।
तो ये एक पत्रकार का नजरिया है, शायद थोड़ा अलग, ज्यादा कहानी कहने वाला।
हाँ, विज्ञान को लैब से निकालकर हमारी जिंदगियों में ले आता है। तो ये किताब असल में है क्या? आप इसे हमारी इम्यून सिस्टम की एक तरह की बायोग्राफी कह सकती हैं।
जीवनी, इम्यून सिस्टम की, ये दिलचस्प है।
हाँ, रिचटेल हमें समझाते हैं कि ये सिस्टम सिर्फ बाहरी दुश्मनों से लड़ने के लिए नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा काम है शरीर के अंदर अंदर शांति और संतुलन बनाए रखना, होमियोस्टेसिस जिसे कहते हैं।
होमियोस्टेसिस, ठीक है। और किताब हमें इसके किरदारों से मिलवाती है ना, वो मैक्रोफेज, टी सेल्स, बी सेल्स।
बिल्कुल। गश्त लगाने वाले मैक्रोफेज से लेकर खास दुश्मनों को याद रखने वाले स्मार्ट टी सेल्स और एंटीबॉडी बनाने वाले बी सेल्स तक।
और फिर वो इतिहास वाला हिस्सा।
हाँ, वो भी बहुत रोचक है। कैसे चेचक के टीके की खोज हुई, कैसे एंटीबॉडीज को पहचाना गया, बड़े दिलचस्प किस्से हैं।
लेकिन आपने कहा कि इसमें कहानियां भी हैं, चार लोगों की।
हाँ, और मेरे ख्याल से वही इस किताब को खास बनाता है। रिचटेल ने इन चार असल लोगों की कहानियों को विज्ञान के साथ ऐसे बुना है कि हम इम्यून सिस्टम के काम करने के तरीके को महसूस कर पाते हैं। जैसे एक व्यक्ति कैंसर से लड़ रहा है।
अच्छा।
दूसरा ऑटोइम्यून बीमारी से, तीसरा इम्यून सिस्टम की कमी से जूझ रहा है, और चौथा एक पुरानी कंडीशन के साथ जी रहा है।
तो उनकी जिंदगियां हमें दिखाती हैं कि जब ये एलिगेंट डिफेंस ठीक से काम करता है या जब ये गड़बड़ा जाता है तो क्या होता है असल में।
एग्जैक्टली। और इन कहानियों के जरिए किताब कुछ बड़े आइडियाज सामने लाती है।
जैसे?
जैसे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन, ये क्यों जरूरी भी है और खतरनाक भी।
हाँ, ये डबल रोल वाली बात।
और ये हाइजीन हाइपोथेसिस कि क्यों आजकल एलर्जी और ऑटो इम्यून बीमारियां बढ़ रही हैं,
जिस पर हम आगे बात करेंगे।
और इम्यूनोथेरेपी, मतलब इम्यून सिस्टम को ही कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करना, ये कैसे इलाज का भविष्य बदल रहा है। अंत में किताब हमें स्वास्थ्य को एक नए नजरिए से देखने को कहती है, लड़ाई की बजाय संतुलन और
कोएग्जिस्टेंस,
सह अस्तित्व। शायद सेहत का राज और ज्यादा एंटीबायोटिक्स या सफाई में नहीं,
बल्कि अपने अंदर की इस जटिल प्रणाली को समझने और उसका सम्मान करने में है। के लिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आपने कहा रिचटेल इम्यून सिस्टम की तुलना एक ऑर्केस्ट्रा से करते हैं, सेना से नहीं, ये तुलना क्यों?
क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में जैसे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स मिलकर एक हार्मनी बनाते हैं, वैसे ही इम्यून सिस्टम के अलग अलग हिस्से मिलकर शरीर का संतुलन वो होम्योस्टैसिस बनाए रखते हैं। इसका काम सिर्फ हमला करना नहीं बल्कि सही सुर बनाए रखना है।
अच्छा, और इसके दो मुख्य भाग हैं, आपने बताया था, इनेट और अडैप्टिव।
हाँ, पहला है जन्मजात इम्यून सिस्टम। ये हमारी कह सकते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है,
पहली रक्षा पंक्ति।
हाँ, ये किसी भी बाहरी चीज पर तुरंत बिना सोचे समझे हमला करती है। इसमें मैक्रोफेजेस जैसे सेल्स होते हैं जो घुसपैठियों को बस निगल जाते हैं।
और इन्फ्लेमेशन, सूजन,
वो इसी का हिस्सा है।
हाँ, वो जो लाली, गर्मी, सूजन होती है चोट लगने पर, वो इसी सिस्टम का एक हथियार है।
जरूरी है, लेकिन अगर कंट्रोल से बाहर हो जाए तो नुकसान भी कर सकती है।
ठीक है, और दूसरा है अनुकूली अडैप्टिव इम्यून सिस्टम।
हाँ, ये ज्यादा स्मार्ट है, ज्यादा विकसित। ये खास दुश्मनों को पहचानना सीखता है, उनकी उनकी मेमोरी बनाता है,
याददाश्त, जैसे हम शक्लें याद रखते हैं
कुछ वैसा ही, और फिर उनके लिए खास हथियार तैयार करता है। यहीं पर आते हैं स्पेशलिस्ट्स, टी सेल्स और बी सेल्स।
टी सेल्स और बी सेल्स, इनके बारे में थोड़ा और बताइए।
टी सेल्स को आप मैनेजर या कमांडर कह सकती हैं। कुछ टी सेल्स होते हैं हेल्पर टी सेल्स, जो हमले को कोऑर्डिनेट करते हैं।
अच्छा।
कुछ होते हैं किलर टी सेल्स, जो सीधे इन्फेक्टेड सेल्स को मारते हैं। लेकिन एक और तरह के टी सेल्स हैं जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, रेगुलेटरी टी सेल्स।
टी रेक्स, रेगुलेटरी।
हाँ, रिचल इन्हें शांति दूत कहते हैं।
शांति दूत, पीसकीपर्स।
हाँ, इनका काम है इम्यून सिस्टम को ज्यादा ज्यादा उग्र होने से रोकना। ये पक्का करते हैं कि हमला सही समय पर रुक जाए और शरीर अपने ही अंगों को नुकसान न पहुंचाए।
रेवा, ये शांति दूत वाली बात तो बहुत बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यहीं पर वो संतुलन वाला आइडिया आता है ना।
बिल्कुल, अगर ये टी रेग्स ठीक से काम ना करे तो इम्यून सिस्टम वो ओवर रिएक्ट कर सकता है, खुद के शरीर पर ही हमला कर सकता है,
जैसा ऑटो इम्यून बीमारियों में होता है।
आपने लिंडा की कहानी का जिक्र किया था, जिसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है।
हाँ।
उसका इम्यून सिस्टम गलती से उसके अपने जोड़ों को ही दुश्मन समझ बैठा है, उन पर हमला कर रहा है।
हाँ। ओ, तो ये टी रेग्स का सही काम करना बहुत जरूरी है,
बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ है बी सेल्स, ये है हथियार बनाने वाले,
वेपन मैन्युफैक्चरर्स।
हाँ, कह सकते हैं। ये खास प्रोटीन बनाते हैं जिन्हें एंटीबॉडी कहते हैं।
एंटीबॉडीज, ये नाम तो सुना है।
ये एंटीबॉडी खास कीटाणुओं या वायरस से चिपक कर उन्हें न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बेअसर कर देते हैं।
और टीके, वैक्सीन, वो इसी सिस्टम पर काम करते हैं।
एग्जैक्टली। ठीक है, शरीर को सिखाते हैं कि असली हमला होने से पहले ही दुश्मन को कैसे पहचानना है और उसके खिलाफ ये एंटीबॉडी कैसे बनानी है। वो एडेप्टिव सिस्टम को ट्रेन करते हैं।
और जब ये सिस्टम मतलब खतरे को पहचानने में चूक जाता है, जैसे कैंसर में, यहीं पर जेसन की कहानी आती है।
हाँ, जेसन जो रिचटल का दोस्त है और जिसे हॉजकिंस लिम्फोमा हुआ। कैंसर सेल्स शरीर की अपनी ही सेल्स होती हैं, जो बागी हो जाती हैं। और कभी कभी इम्यून सिस्टम उन्हें अपना समझकर नजरअंदाज कर देता है, उन्हें पहचान नहीं पाता।
तो फिर क्या होता है, इम्यूनोथेरेपी का रोल यहीं आता है।
हाँ, यहीं पर इम्यूनोथेरेपी जैसी नई तकनीकें काम आती हैं। जेसन और एक और मरीज बॉब, जिसे मेलेनोमा था, दोनों की कहानियां दिखाती हैं कि कैसे डॉक्टर्स अब इम्यून सिस्टम को ही कैंसर से लड़ने के लिए ट्रेन कर सकते हैं या उकसा सकते हैं।
बॉब की कहानी में चेक पॉइंट इनहिबिटर दवाओं का जिक्र है, ये क्या चीजें?
ये दवाएं इम्यून सिस्टम पर लगे एक तरह के ब्रेक को हटा देती हैं।
ब्रेक, इम्यून सिस्टम पर ब्रेक।
हाँ, सोचिए कि कैंसर सेल्स बहुत चालाक होती हैं। वो अक्सर इम्यून सेल्स, खासकर टी सेल्स को एक सिग्नल भेजती हैं, जैसे PD-1 नाम का एक ब्रेक, जिसका मतलब होता है मैं दोस्त हूँ, मुझ पर हमला मत करो।
अच्छा, धोखा देती है मतलब।
हाँ, और चेकपॉइंट इनहिबिटर दवाएं इसी सिग्नल को ब्लॉक कर देती हैं, वो उस ब्रेक को हटा देती हैं।
तो टी सेल्स को पता चल जाता है कि ये दुश्मन है।
बिल्कुल, और फिर टी सेल्स उन कैंसर सेल्स पर हमला कर पाते हैं जिन्हें वो पहले अनदेखा कर रहे थे। ये वाकई एक क्रांतिकारी बदलाव है,
शरीर की अपनी डिफेंस फोर्स को ही हथियार बनाना।
हाँ, और इससे भी एक कदम आगे की तकनीक है कार टी सेल थेरेपी।
कार टी सेल,
इसमें मरीज के अपने टी सेल्स को लैब में जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है, उन्हें कैंसर का सुपर शिकारी बनाया जाता है।
सुपर शिकारी,
और फिर उन बदले हुए सेल्स को वापस मरीज के शरीर में डाला जाता है। ये एक जीवित दवा की तरह है।
वाह, ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर पर ये असलियत हैं।
हाँ, ये भविष्य के इलाज की झलकियां हैं जो अब हकीकत बन रही हैं।
लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि हमारा इम्यून सिस्टम आज इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है, मतलब ये एलर्जीज और ऑटो इम्यूनिटी क्यों बढ़ रही हैं।
यहीं पर रिचटेल उस विकासवादी पहलू पर आते हैं। वो बताते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम लाखों सालों में ऐसे माहौल में विकसित हुआ है जो कीटाणुओं, परजीवियों, मिट्टी, गंदगी, इन सब से भरा हुआ था।
आज के माहौल से बिल्कुल अलग।
हाँ, और ये लगातार संपर्क इम्यून सिस्टम के लिए एक तरह का स्कूल था, एक ट्रेनिंग ग्राउंड, जहां उसने सीखा कि असली दुश्मन कौन है और हानिरहित चीजों को कैसे कैसे इग्नोर करना है।
और आज,
और यहीं पर आती है वो हाइजीन हाइपोथेसिस या ओल्ड फ्रेंड्स वाली थ्योरी।
हाइजीन हाइपोथेसिस,
हाँ, ये थ्योरी कहती है कि हमारी आज की जो अत्यधिक साफ सुथरी दुनिया है, एंटीबायोटिक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल, प्रोसेस्ड खाना, एंटीबैक्टीरियल साबुन, इन सब ने हमारे इम्यून सिस्टम को उस जरूरी ट्रेनिंग से, उस शिक्षा से वंचित कर दिया है।
तो नतीजा?
नतीजा ये कि इम्यून सिस्टम या तो कह सकते हैं बोर हो गया है या कंफ्यूज हो गया है। उसे ठीक से पता नहीं कि किस पर रिएक्ट करना है और किस पर नहीं।
ये तो सोचने वाली बात है। मतलब जिन चीजों को हम प्रोग्रेस समझ रहे हैं, ज्यादा सफाई, हर जर्म को मारना, वही शायद हमारे इम्यून सिस्टम के संतुलन को बिगाड़ रही है।
रिचटेल का तर्क तो यही है।
और इसीलिए एलर्जी और ऑटोइम्यून बीमारियां बढ़ रही हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम अब परागकणों या मूंगफली जैसी हानि रहित चीजों को बड़ा खतरा समझने लगा है।
हाँ, या फिर शरीर की अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर रहा है, जैसे ऑटो इम्यूनिटी में होता है।
ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना?
हाँ, लगता है, लेकिन इसके पीछे काफी वैज्ञानिक आधार है। और इसका मतलब ये नहीं कि हम साफ सफाई छोड़ दें और गंदगी में रहें।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं।
वो हमेशा दुश्मन नहीं होते, कुछ हमारे लिए जरूरी भी होते हैं, एक तरह से पुराने दोस्त या शिक्षक।
तो इस पूरी चर्चा से कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेकअवेज क्या निकलती हैं? मेरे लिए तो शायद सबसे पहली और बड़ी बात यही है, इम्यून सिस्टम युद्ध की मशीन नहीं, शांति स्थापित करने वाला है।
बिल्कुल।
इसका लक्ष्य सिर्फ मारना नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखना है। ये नजरिया ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है।
हाँ, ये पर्सपेक्टिव शिफ्ट बहुत जरूरी है। और दूसरा अहम संदेश है सूजन यानी इन्फ्लेमेशन का दोहरा चरित्र, वो डबल एच वर्ड वाली बात,
दोधारी तलवार।
हाँ, रिचटेल की वो उपमा बहुत अच्छी है। सूजन वो आग है जो आपका खाना पका सकती है या आपका घर जला सकती है। अंतर सिर्फ नियंत्रण में है।
अक्यूट इन्फ्लेमेशन जरूरी है हीलिंग के लिए, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन
वो आज की कई बीमारियों की जड़ है, हार्ट डिजीज, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स, बहुत कुछ।
तीसरा, वो हाइजीन हाइपोथेसिस और आधुनिक जीवन शैली का असर, ये विचार कि हमारी जरूरत से ज्यादा सफाई शायद हमें बीमार बना रही है, ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, रिचटेल का वो कथन बहुत पावरफुल है, हमने अपनी दुनिया को उन्हीं रोगाणुओं से साफ कर दिया है जो कभी हमारे इम्यून सिस्टम के सबसे बड़े शिक्षक हुआ करते थे। स्वच्छता की हमारी खोज में हमने भ्रम, कन्फ्यूजन की एक महामारी पैदा कर दी है।
भ्रम की महामारी, कन्फ्यूजन।
चौथा, मन और शरीर का गहरा कनेक्शन, स्ट्रेस और नींद।
हाँ, ये तो हम हमेशा सुनते हैं, पर किताब इसे वैज्ञानिक आधार देती है।
बिल्कुल, ये दिखाती है कि कैसे पुराना तनाव और नींद की कमी हमारे इम्यून सिस्टम को सीधे तौर पर मतलब कमजोर करते हैं और सूजन को बढ़ाते हैं। हमारी मानसिक हालत का असर हमारी फिजिकल डिफेंस पर पड़ता है।
और पांचवा, इम्यूनोथेरेपी से उम्मीद, ये देखना कि साइंस सब शरीर की अपनी ताकत को इस्तेमाल करके कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने के तरीके खोज रहा है।
ये वाकई आशा जगाता है। रिचटेल कहते हैं, एक सदी तक कैंसर के खिलाफ हमारा मुख्य हथियार जहर था, अब हम खोज रहे हैं कि सबसे सुरुचिपूर्ण और शक्तिशाली हथियार हमेशा से हमारे अंदर ही था।
वाह, तो इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए क्या मतलब है? कोई प्रैक्टिकल टिप्स, हम अपनी सेहत और इम्यून सिस्टम के संतुलन के लिए क्या कर सकते हैं?
हाँ, कुछ बातें हैं जो हम कर सकते हैं। पहली तो शायद यही है कि गंदगी से डरना थोड़ा कम करें।
अच्छा।
खासकर बच्चों के लिए, उन्हें मिट्टी में खेलने दें, पालतू जानवरों के साथ रहने दें, हर चीज को एंटीबैक्टीरियल वाइप्स से पोंछने की जरूरत नहीं, इम्यून सिस्टम को थोड़ी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए।
ठीक है।
दूसरा, नींद को प्राथमिकता दें। किताब बताती है कि गहरी नींद के दौरान इम्यून सिस्टम अपनी मरम्मत करता है, याददाश्त मजबूत करता है। रोजाना 7-8 घंटे की अच्छी नींद, ये शायद सबसे अच्छी इम्यून बूस्टर है।
ये तो करना ही चाहिए, तीसरा
तनाव प्रबंधन, क्रॉनिक स्ट्रेस इम्यून सिस्टम के संतुलन को बिगाड़ता है, तो ध्यान, योग, प्राणायाम या बस प्रकृति में समय बिताना, ये सब सिर्फ फील गुड एक्टिविटीज नहीं है, ये इम्यून हेल्थ के लिए जरूरी निवेश है।
चौथा खान पान।
हाँ, बहुत जरूरी, विविध ताज़े रेशेदार भोजन, मतलब फल, सब्जियाँ, साबुत अनाज, ये हमारे पेट के अच्छे बैक्टीरिया को खुश रखते हैं।
गट माइक्रोबायोम।
हाँ, और पेट इम्यून सिस्टम का एक बहुत बड़ा हब है। प्रोसेस्ड खाने और ज्यादा चीनी से बचना चाहिए, क्योंकि वो सूजन बढ़ा सकते हैं।
और पांचवा,
नियमित पर मध्यम व्यायाम,
मॉडरेट एक्सरसाइज,
बहुत ज्यादा नहीं, हाँ हल्का या मध्यम व्यायाम इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लेकिन बहुत ज्यादा, बहुत थका देने वाला व्यायाम वो अस्थाई रूप से इम्यून सिस्टम को दबा सकता है। फिर वही बात, संतुलन।
तो ये सब बातें सुनने में तो आम लगती हैं, अच्छी नींद, कम तनाव, सही खाना, एक्सरसाइज।
हाँ, पर किताब इन्हें इम्यून सिस्टम के विज्ञान से जोड़कर इनका महत्व समझाती है। ये सिर्फ लाइफस्टाइल टिप्स नहीं, ये हमारे अंदर के ऑर्केस्ट्रा को सही सुर में रखने के तरीके हैं।
तो अंत में, इस किताब से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे यादगार बात क्या रही? इस पूरी चर्चा से आप क्या लेकर जा रही हैं?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का न होना नहीं है, ये संतुलन का होना है, बैलेंस।
हाँ।
और ये संतुलन बहुत नाजुक है, जिसे हमारी रोजमर्रा की आदतें, हमारी नींद, हमारा तनाव, हमारा खाना, हमारा माहौल, ये सब सीधे तौर पर प्रभावित करती हैं। अपने इम्यून सिस्टम को जानना, उसकी भाषा समझना और उसका सम्मान करना, ये आज के दौर में बहुत जरूरी स्किल है, मुझे लगता है।
बिल्कुल, और मेरे लिए ये समझ कि इम्यून सिस्टम सिर्फ एक सिपाही नहीं है जो कीटाणुओं से लड़ता है, बल्कि एक बुद्धिमान संतुलन बनाने वाला साथी है।
हाँ,
इसके प्रति एक सम्मान का भाव आता है। और ये विचार कि शायद हमें प्रकृति और माइक्रोब्स की दुनिया के साथ लड़ने की बजाय एक सह अस्तित्व में रहना सीखना होगा, ये किताब विज्ञान को बहुत ही मानवीय और सुलभ तरीके से पेश करती है।
हाँ, बहुत खूबसूरती से। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।